धवला पुस्तक 9 लेक्चर नंबर 4 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धादद्दट्टमला विशुद्धबुद्धे लद्धसौवत्था तिहुवन शिरसे हरया पसियंतु भंडारया सौवे। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें यह चतुर्थ खंड, इसका नाम है वेदना, और इसमें से कृति अनुयोग द्वार अपना यहाँ शुरू हुआ है। 9वें पुस्तक के 22 नंबर के पृष्ठ पर आ गए, 22। देखो विषय क्या चल रहा था उसका जरा हम बात देखते। हमने अवगाहना के 64 भेद देखे थे। सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की, और सबसे उत्कृष्ट अवगाहना वो महामत्स्य की। तो वहां एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए इतने सारे विकल्प हमने देखे, भेद देखे जुदे जुदे, किससे कौन से कितने गुणा है। तो अभी डायरेक्ट पूछ रहे थे पहले पॉइंट पर सूक्ष्म निगोद की अवगाहना है, 64वें में महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना है, तो वो पहले से 64 वाला कितने गुणा है ये पूछा था। तो कहते वो भी पल्ले के असंख्यातवें भाग गुणा है, क्योंकि बीच में जितने गुणकार थे तो उसका भी आपस में गुणा किया, और ये उसका गुणनफल जिसको कहेंगे वो भी पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है। क्योंकि निगोद की अवगाहना कितनी छोटी देखते हम, वो तो आंखों से तो दिखाई भी नहीं दिखेगी देगी, और वो महामत्स्य की तो कितनी है, 12.5 करोड़ घन योजन, इतनी लंबी चौड़ी, वो भी कितने गुणा हो जाता है, पल्ले के असंख्यातवे भाग गुणा। क्योंकि पल्ले के असंख्यातवे भाग का प्रमाण भी अलग अलग जुदा जुदा हो सकता है ना, वो बात यहाँ हो रही थी। अब यहाँ 22 नंबर के पेज पर ये जो देख रहे थे हम, पहला पैराग्राफ वहां से पढ़ेंगे, तीसरी लाइन, इस पल्ल्योपम के असंख्यातवे भाग का घनांगुल में भाग देने पर घनांगुल के असंख्यातवे, देखो पल्ल्य से अंगुल बड़ा है, 2 का वर्ग करो तो जब पल्ल्य संख्या आती है असंख्यात बार वर्ग करने पर, तो पल्ले के आगे भी पल्ले का वर्ग, उसका वर्ग, उसका वर्ग, उसका वर्ग, उतने ही असंख्यात बाद करो तो जब आके सुच्चंगुल का प्रमाण आता है। ये सुच्चंगुल का घन करो तो घनांगुल आता है। तो यहाँ कहते हैं कि पल्लेपम के असंख्यातवे भाग का घनांगुल में भाग देने पर घनांगुल के असंख्यातवे भाग, जो घनांगुल का असंख्यात भाग ऐसा, जो सुच्चंगुल का असंख्यात भाग मात्र उच्छेद, उच्छेद यानी उसकी हाइट, विष्कम्भ यानी उसकी विड्थ, वो आयाम लंबाई यानी लंबाई चौड़ाई मोटाई क्षेत्र आता है, यह जघन्य अवधि क्षेत्र। हमने देखा ना अवधि क्षेत्र किसको कहना, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्ति की जो जघन्य अवगाहना है जिसको कहेंगे घनांगुल का असंख्यात भाग, वो है जघन्य अवधि का क्षेत्र। इतने क्षेत्र में जितने वो द्रव्य की अपेक्षा सूक्ष्म स्कंधों की बात की थी, वो उस उतने क्षेत्र में जितने वो स्कंद टुकड़े खंड है उसको सबको जानेगा। तो कहते यह जघन्य अवधि क्षेत्र अर्थात जघन्य अवधि ज्ञान से विषय किया गया संपूर्ण क्षेत्र है, यानी अवधि ज्ञानी इतने क्षेत्र में जानेगा। और घन प्रत्राकार से ही सब अवधि क्षेत्र अवस्थित है ऐसा नियम नहीं है। क्या कहते हैं, घन प्रत्राकार का अर्थ क्या होता है? घन यानी जो ऐसा है, ये घन घनाकार है, और प्रत्राकार यानी ऐसा, ये जो प्रतर है, स्क्वायर है। तो घन प्रत्राकार ही उसका होता है, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु सूक्ष्म निगोह जीव के अवगाहना क्षेत्र के समान अनियत आकार वाले, यानी वो बराबर ऐसा क्यूबिकल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अनियत आकार हो सकता है। अवधि क्षेत्रों का समीकरण कर, समीकरण करने ने वो अनियत क्षेत्र है, तो उसको हम सबको इक्वल करेंगे, समीकरण ने समान करके, घन प्रत्राकार करके प्रमाण प्ररूपना की जाती है। क्योंकि हमें जो बताना है, इतनी हाइट, इतनी विड्थ वगैरह, वो तो इक्वल करके बताएंगे, क्योंकि ऐसा करने के बिना उसका कोई उपाय नहीं है। यानी सूक्ष्म निगोद की अवगाहना ऐसे कुछ नहीं है, जो हम कहते हैं ना क्यूबिकल, ऐसा नहीं है। जैसे शक्कर का टुकड़ा कैसा है, वो चौकोनी है ना, क्यूबिकल है, ऐसा तो कोई शेप नहीं उसका, अनियत है। पेज नंबर 22 पर है, हम अभी नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, या ऊपर के दूसरा कहो। यानी वो सूक्ष्म निगोद की जो अवगाहना है, यानी उसकी जो कितनी जाड़ाई, कितनी मोटाई, कितनी लंबाई, तो कहते वो अनियत है। परंतु प्रमाण बताते समय वो नियम कैसे, जिसको कहेंगे इक्वल करके बताएंगे। सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य अवगाहना मात्र, यह सभी जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र। अभी यहां आगे थोड़ी गड़बड़ी, पहले और पढ़ना, ये क्षेत्र उसका, और अवधि ज्ञानी जीव और उस अवधि ज्ञानी जीव का, उस अवधि ज्ञानी जीव के द्वारा ऐसा चाहिए, और उस अवधि ज्ञानी जीव के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले द्रव्य का अंतर है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। परंतु यह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने से सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य अवगाहना से जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र के असंख्यात गुणे होने का प्रसंग आवेगा। ऊपर क्या लिखा है, सोम निगोद जहन्नो गाहनम मित्तमेदम दौसवम जहन्न ओहि खेतम खेतम ओहि नानी जीवस्य तेन परिशिज्यमान दौवस्य अंतरमिति केवी आयरिया भणन्ति। यानी वो उससे जानने वाले द्रव्य का और उसे क्षेत्र का अंतर है, ऐसा कितने आचार्य बताते हैं, वो घटित नहीं होता है। यानी वो तो वाक्य रचना बराबर नहीं हुई, ये कहना चाहते हैं। परंतु ये घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने से, हमने देखा था, शंकाकार पूछते हैं असंख्यात गुणा कैसे होगा, क्योंकि जघन्य अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र के विस्तार और उच्छेद से आयाम को गुणा करने पर उससे असंख्यात गुणत्व सिद्ध हो जाता है, और असंख्यात गुणत्व संभव है नहीं, क्योंकि जितनी सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य अवगाहना है उतना ही जघन्य अवधि का क्षेत्र है, ऐसा कहने वाले गाथा सूत्र के साथ विरोध होगा। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो जघन्य अवधि का क्षेत्र जो बताया है, वो जघन्य अवधि ज्ञान के द्रव्य की अवगाहना जो बताई ना, वो द्रव्य देखा हमने, औदारिक शरीर का संचय था विश्रसोपचय सहित, उसको लोक का भाग दिया था, यानी लोक प्रमाण खंड किए थे। तो उसमें एक खंड का जो प्रमाण है परमाणुओं का, उसको द्रव्य कहा था, और उसकी जो अवगाहना है, उस द्रव्य की जितनी अवगाहना, वो एक खंड की जितनी अवगाहना है, वो उतने इतनी अवगाहना वाले ये ऐसे खंड, वो सूक्ष्म निगोद की जो अवगाहना बताई उसमें कितने होते, तो असंख्यात होते हैं, ये कहना वहाँ बताया था। वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में ये बात आई थी। कल कौन से हमने 515 के आसपास कुछ देखा था ना, हाँ 515 में। देखो यहाँ ये बात बताई थी जघन्य, पेज नंबर 516 है हमारा, वहां से मैं पढ़ती हूँ। जघन्य देशावधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का प्रमाण हम नहीं जानते, क्योंकि ऐसा उपदेश नहीं, परंतु परम गुरुओं के उपदेश की परंपरा से इतना जानते कि भुज कोटि और वेद, यानी लंबाई चौड़ाई और उसकी मोटाई के समीकरण से जो क्षेत्र खुले हुए उसको सब हमने समान कर देंगे। जैसे लोक का प्रमाण निकालते हैं, लोक का आकार अलग अलग है, परंतु उसको हम क्या करते हैं, सात राजू भाई सात राजू भाई सात राजू, इसी तरह इसको समझा रहे। तो वो कितना उसका क्षेत्रफल होता है कि जो निगोद की जो अवगाहना है पूरी, उसकी लंबाई चौड़ाई जुदी जुदी है, परंतु उसकी जितने घनफल निकलेगा उतना ही वो समान करके घनफल बता रहे, ये उसका अर्थ है। अब इस क्षेत्र में जो हमने जो द्रव्य का प्रमाण देखा था, उतने खंड कितने हो गए, तो कितने असंख्यात होते हैं। परंतु यहां उसको घटित नहीं होता ऐसा कहा है, अब वो बात हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 23 पर आते हैं। चूंकि अवधि ज्ञानी एक श्रेणी में ही जानता है, अतएव सूत्र विरोध नहीं होगा, ऐसा कितने आचार्य कहते हैं, परंतु यह भी घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर चक्षु इंद्रियजन्य ज्ञान की अपेक्षा भी उसके जघन्यता का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि कारण की चक्षु इंद्रियजन्य ज्ञान से संख्यात सूक्ष्मगुल विस्तार उच्छेद और आयाम रूप क्षेत्र के भीतर स्थित वस्तु का ग्रहण देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं, अगर हम ऐसा मानेंगे कि अवधि ज्ञान एक क्षेत्र में एक प्रदेश इतने एक पंक्ति में इतना ही जानते हैं, ऐसा एक लेवल पर ऊपर नीचे का ऐसा नहीं जानते, कहते तो आप आंखों से तो कितना देखते हैं, सामने वस्तु बड़ी है तो पूरा इतना क्षेत्र एक साथ जानते हैं ना, तो वो आंखों से जानते हैं तो इससे नहीं जानते, ऐसा कहना पड़ेगा, ये बात घटित नहीं होती, ये कहना चाहते हैं। तथा वैसा मानने पर इस जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र का आयाम असंख्यात योजन प्रमाण प्राप्त होगा। शंका, असंख्यात योजन क्यों कहा, क्योंकि एक ही पंक्ति में जानता है, एक ही बाजू एक ही पंक्ति में ऐसा कहेंगे तो घनांगुल का जो असंख्यातवा भाग है उसमें तो कितने योजन तक जान हो जाएगा, पर इतने योजन तक तो जानता नहीं है अवधि ज्ञानी, एक श्रेणी में नहीं एक पंक्ति में, एक श्रेणी में ने आकाश की एक पंक्ति में इतना अवधि ज्ञान वहां तक जानता है ऐसा कहेंगे कोई, तो ये भी घटित नहीं होता। घनाकार उस क्षेत्र तक उसमें ही जानता है वो, अगर उसको उसी घनांगुल के असंख्यात भाग को हम ऐसा एक लाइन में लिखेंगे तो कितने योजन घटित हो गए, ये यहाँ कहना चाहते हैं। शंका, यदि उक्त अवधि क्षेत्र असंख्यात योजन आयाम रूप प्राप्त होता है तो होने दीजिए, क्योंकि वह इष्ट है। कहते ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके काल से असंख्यात गुणे अर्धमास काल से अनुमित असंख्यात गुणे भरत रूप अवधि क्षेत्र में भी असंख्यात युजन प्रमाण आयाम नहीं पाया जाता। क्या कहना चाहते हैं? अवधि ज्ञान का जघन्य काल कितने काल आगे पीछे जानता है, तो अवली का असंख्यात वा भाग वो कितना छोटा होगा? एक सेकंड में इतने करोड़ों आवली होती है, अनेक कोड़ा कोड़ी आवली आवली, और उसका असंख्यात प्रभाव कितना छोटा होगा? इतना ही उसका काल का प्रमाण है, जघन्य अवधि ज्ञान का। इतने आगे पीछे काल तक वो जान सकता है, यानी सेकंड का भी असंख्यात प्रभाव हो गया वो। ख्याल में आई बात? तो कहते हैं अगर आप असंख्यात योजन कहते हैं तो भरत क्षेत्र कितने योजन है? तो लिमिटेड जो 526 और कुछ आता है ना, उतने हैं। असंख्यात योजन तो नहीं उसका विस्तार। और भरत क्षेत्र प्रमाण जानने वाले अवधि ज्ञान जो है उसमें भी असंख्यात योजन घटित नहीं हो रहा। ख्याल में? यानी जब भरत क्षेत्र रूप अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है तो 15 दिन का उसका काल का लिमिट है। जो जीव भरत क्षेत्र प्रमाण क्षेत्र तक अवधि ज्ञान का क्षेत्र है उसको, यानी पूरे भरत क्षेत्र तक के पुद्गलों के, नहीं वो तो स्कंदों को यथायोग्य स्कंदों को जानता है, तो वहां उसका काल का प्रमाण कितना है? 15 दिन। और यहाँ काल का क्या प्रमाण? हम जगन्य की बात कर रहे हैं, यहाँ काल का प्रमाण क्या है? अवली का असंख्यात भाग। तो अवली का असंख्यात भाग है और असंख्यात योजन क्षेत्र हो जाएगा, ये घटित नहीं होता, ये उससे अनुमान कर दिया उन्होंने। दूसरे यानी दूसरी बात, उत्कृष्ट देशावधि ज्ञानी संयत, यानी उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान किसको होता है? संयमियों को होता है। तो वो संयत अपने उत्कृष्ट द्रव्य को आदि करके एक परमाणु आदि अधिक्रम से स्थित घनलोक के भीतर रहने वाले सब पुद्गल स्कंदों को क्या युगपत जानता है या नहीं जानता? यदि नहीं जानता है तो उसका अवधि क्षेत्र लोक नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक आकाश श्रेणी में स्थित पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करता है। बात किसकी हो रही है? यदि ऐसा हम मानेंगे एक आकाश श्रेणी में रहने वाले ही पुद्गलों को जान सकता है, तो जिसका उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान है, तो उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान कितने क्षेत्र को जानता है? तो पूरे लोक को जानता है। और पूरा लोक एक आकाश श्रेणी नहीं हो सकता, ख्याल में आए ना? 343 घन राजु हो जाता है वो, और किसी एक पंक्ति में जानना है तो 14 राजु ही होगा। तो ये भी उसके द्वारा भी ये सिद्ध होता है कि वो श्रेणी में ही जानता है, ऐसा नहीं, पूरे घनाकार एरिया को जानता है। और यह एक आकाश पंक्ति घनलोक प्रमाण हो नहीं सकती, क्योंकि घनलोक के असंख्यात वे भाग रूप उसमें घनलोक प्रमाणत्व का विरोध है। यानी क्योंकि हमने 14 राजू के बदले 7 राजू लिया, यानी 343 घन राजू के बदले अगर हम एक श्रेणी भी लिए, 7 राजू वाली भी लिए, 7 राजू तक जानता है, 14 राजू तक जानता है, तो जिसको हम कहेंगे वो श्रेणी है, जगत श्रेणी है। जगत श्रेणी को और जगत श्रेणी से गुणा करेंगे तो जगत प्रतर आता है, और उसको और एक जगत श्रेणी से गुणा करेंगे तो घन लोक आता है। यानी एक जगत श्रेणी कहो या दो जगत श्रेणी, जो 14 राजू है, वो तो पूरे लोक का असंख्यात भाग है, और इसका क्षेत्र तो पूरा लोक है, तो वो भी घटित नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। यानी वो केवल एक आकाश की श्रेणी में जानता है, ये बात नहीं घटित होती है, ये यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह कुलाचल और देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है? पूरा लोक। और वो क्या क्या जानता है? कुलाचल, कुलाचल समझते जो अभी हमारा भरत है, पूरा ही जम्बूद्वीप है, उसमें 6 आड़े पर्वत है, उसके द्वारा 7 क्षेत्र हो जाते हैं, वो कुलाचल कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त वह कुलाचल कहते, अचल ने पर्वत, वो उनका नाम कुलाचल है, हर एक का फिर नाम अलग अलग है, हिमवान महा हिमवान वगैरह उसके, पर सबको मिलकर एक नाम क्या है? कुलाचल पर्वत। मेरु पर्वत, भवन विमान, आठ पृथ्वियों, देव विद्याधर, गिरगिट और सरीसृपादिकों को भी नहीं जान सकेगा, क्योंकि इनका एक आकाश में अवस्थान नहीं है। एक आकाश यानी एक श्रेणी में, क्या कहते हैं, यदि एक श्रेणी की बात जानते ऐसा कहेंगे तो इतनी मोटी चीज़ है तो एक श्रेणी में तो नहीं है, इतना तो उसने एरिया ऑक्यूपाई किया है, तो एक ही श्रेणी में अगर जानता है तो इन सभी अलग अलग पर्वतों को वगैरह वगैरह कैसे जान सकता, नहीं जान सकता, क्योंकि वो एक ही आकाश की श्रेणी में नहीं है और वह उनके अवयवों को भी नहीं जानेगा। क्योंकि हमने देखा ना अभी, ऐसे सिंगल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ जो जो वस्तुएं हैं, ये बेड की भी सिंगल लाइन में जितनी है उसका परमाणु उतने ही आएंगे, और वो सोफे की भी पूरा सोफा नहीं दिखेगा, एक एक लाइन में जितने आएगी प्रदेश उतने ही को जानेगा, ये तो कोई वस्तु नहीं जान सकता ऐसा, क्योंकि उसके केवल वो उस एक लाइन में जितने परमाणु उसको ही जानेगा, पूरे घनाकार एरिया उसको तो नहीं जानेगा। यदि श्रेणी में जानता है मानेंगे तो कहते वो उनके अवयव को भी नहीं जानेगा, क्योंकि अवयवी के अज्ञात होने पर यह उसका अवयव है, इस प्रकार जानने की शक्ति नहीं हो सकती। जैसे हमने अभी बताया, एक हमने यहाँ से वहाँ तक प्रदेशों की लाइन खींची, तो ये जो बीच में ये पलंग के परमाणु है, ये सोफा के परमाणु है, टेबल के परमाणु है, कैसे जानेगा? पूरा अवयवी यानी पूरी वस्तु जाने बिना ये उसके अवयव है कैसे जान सकेगा, क्योंकि पूरी वस्तु एक ही श्रेणी में नहीं पाई जाती, वो तो घनाकार कुछ है, उसके तो हाइट वेट यानी उसका जो कुछ विड्थ वगैरह है ना, घनाकार है वस्तु, और हम उसके एक सिंगल आकाश की पंक्ति में उसको जान रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। यदि वह युगपत सब घनलोक को जानते हैं तो हमारा पक्ष सिद्ध है, क्योंकि वह प्रतिपक्ष से रहित है। प्रतिपक्ष क्या था? एक ही श्रेणी के यानी आकाश की एक ही श्रेणी को जानता है, ये प्रतिपक्ष का कहना था, वो सिद्ध नहीं होता है। यानी जो सूक्ष्म निगोद की जो अवगाहना है वो तो घनाकार, घन प्रतराकार जो कहा, यानी उसको लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, तीन डायमेंशन वाली है। अब यहाँ पढ़ते हैं 24 नंबर के पेज पर नया पैराग्राफ। सूक्ष्म निगोद जीव की अवगाहना को घन प्रतराकार से स्थापित करने पर एक आकाश विस्तार रूप अनेक श्रेणी को ही जानता है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, परंतु यह भी घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने पर जितनी सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य अवगाहना है उतना ही जघन्य अवधि का क्षेत्र है, ऐसा कहने वाले गाथा सूत्र के साथ विरोध होगा। हाँ, एक्स वाई यानी देखो, अभी जैसे हमें पुस्तक घनाकार है तो खाली एक पेज जो है तो उसमें तो पुस्तक की मोटाई नहीं ग्रहण होती ना, खाली ऐसा क्षेत्र घट, इसलिए उन्होंने कहा एक्स और वाई, दो डायमेंशन लिए। हाँ, मैंने पहले तो केवल एक सिंगल पंक्ति ली थी, जैसे हमारे हॉल है हमारा, तो उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, हाइट भी है ना, तो पहले क्या खाली लंबाई ली थी एक सिंगल लाइन में, अभी लंबाई चौड़ाई यानी प्रतराकार हुआ, उसको प्रतराकार कहते हैं, फिर भी सभी वस्तुओं का ऐसा ग्रहण नहीं होगा, हाइट भी उसमें लेनी चाहिए, तब हम कहें ना ये हॉल में कितनी कितनी वस्तुएं हैं, हॉल में कितनी वस्तुएं कहेंगे तो एक सिंगल लाइन में नहीं कह सकते, और खाली जमीन में भी हर एक वस्तु को कुछ ना कुछ हाइट है ना, खाली जमीन के एक सतह पर कितनी वस्तुएं है, हर एक का नीचे जो टच हुआ है जमीन को उतना कहेंगे हम, बाकी तो जमीन वाली एरिया में सभी वस्तुएं नहीं कह सकते, ये कपाट उभा ऐसा खड़ा है तो वो वस्तु खाली एक क्षेत्र में नहीं पाई जाती, तो जहाँ हाइट है हॉल को तो हम कहेंगे ये वस्तुएं यहाँ पर स्थित है, तो हमने इन वस्तुओं को जाना जुदा जुदा। इसको अरविंद मैंने कहा एक समय दो लिए, मैंने दो डायमेंशन लिए यहाँ पर। फिर से पढ़ती हूँ। सूक्ष्म निगोद जीव की अवगाहना को घन प्रतराकार से स्थापित करने पर एक आकाश विस्तार रूप अनेक श्रेणी को ही जानता है, ऐसा कितने आचार्य कहते हैं। एक आकाश विस्तार रूप है ना, अभी एक लेवल पर श्रेणी अलग हुए, अनेक पंक्तियां हुई ना, क्योंकि जो जैसे हमने ऐसा हॉल देखा और एक सिंगल लाइन, दूसरी सिंगल लाइन, तीसरी सिंगल लाइन, तो हमने पूरी एरिया कवर की। तो कहते ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने पर जितनी सूक्ष्म निगो जीव की जघन्य अवघाना है उतना ही जघन्य अवधि का क्षेत्र है, ऐसा कहने वाले गाथा सूत्र के साथ विरोध होगा। क्योंकि अवघाना जब कहते हैं तो उसमें भी तीन डायमेंशन होते हैं, जिसको भुजा, कोटि और वेद कहते हैं, और छद्मस्थों के अनेक श्रेणियों का ग्रहण विरुद्ध नहीं है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान से अनेक श्रेणियों में स्थित पुद्गल स्कंधों का ग्रहण पाया जाता है। यानी हम चक्षु इंद्रिय के द्वारा भी जो देखते हैं ना, अभी हमने जो वस्तुएं देखी यहाँ पर, तो वो तो एक ही सतह पर है, खाली आंखों की सतह पर है, उसको जानते हैं। अरे तो ऊपर से नीचे तक जानते हैं ना, सामने इतने जो उनकी जो हाइट को भी जानते हैं कि नहीं, वो अलग अलग लेवल पर स्थित है सब। यानी यहाँ यही हमको सिद्ध, यानी आचार्य ने यही बात सिद्ध की, केवल एक श्रेणी में नहीं जानता, केवल एक आकाश के प्रतर में नहीं जानता, तो वो घन यानी वो उसके हाइट भी होगी, यानी जो एरिया है सूक्ष्म निगोद की जगन्या होगा ना, उसको भुजा भी है, कोटि भी है और वेद भी है, ये कहना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, श्लोक पढ़ना है पहले। श्लोक में ये बताने जाने वाले हैं, पेज नंबर है 24, नीचे का पैराग्राफ। यहाँ देशावधि के 19 कांडक कहेंगे। अब ये कांडक किसको कहना वो देखते हैं। हमने क्या देखा है कि जघन्य देशावधि का उन्होंने द्रव्य क्षेत्र जो कुछ काल वगैरह बताना चाहा, अभी इसमें सबने द्रव्य भी बताएंगे, क्षेत्र, काल सब बताएंगे। 19 कांडक यानी वो तो जघन्य से पहला नंबर का जघन्य का अवधि ज्ञान है, वहां से आगे कुछ लिमिटेड है, उसको कहेंगे ये जघन्य कांडक है। उसमें उसकी यानी वो अवधि ज्ञान के 19 अलग अलग स्टेप डिवाइड किए, यहाँ से यहाँ तक, जैसे पहले से 20 नंबर के अवधि ज्ञान तक, 20 नंबर से आगे लगकर 50 नंबर के अवधि ज्ञान तक, ऐसे जो उसकी जघन्य और उत्कृष्ट मर्यादा बताएंगे उसको कांडक कह दिया। यानी पहले कांडक का जघन्य क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र कितना है, उत्कृष्ट कितना है, पहले का उत्कृष्ट है, दूसरे का जघन्य कहेंगे, वो उससे कहाँ तक है, उसका उत्कृष्ट कहाँ तक है, तीसरे का उत्कृष्ट कहाँ तक है, ऐसे उसके बात बताएंगे। अब पहले हम 5 नंबर का ये गाथा पढ़ेंगे। अंगुल मावली आए भागम संखे जदो विसंखे जा, अंगुल मावली अंतो आवलियम चांगुल पुधत्तम। उसका अर्थ देखते नीचे। देशावधि के 19 कांडकों में से प्रथम कांडक में, कांडक यानी टुकड़ा, अभी जघन्य अवधि ज्ञान से उत्कृष्ट अवधि ज्ञान तक हम एक सिंगल लाइन में लिखेंगे, तो पहला टुकड़ा है, पहला अवधि ज्ञान के अलग अलग भेद है, उन सबको नाम क्या है, पहला कांडक। तो प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, और जघन्य काल आउली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। यह हमने देखा था, अभी हमने देखा था द्रव्य कितना देखा था, तो औदारिक का शरीर का संचय है और उसका विसरस उपचय है, उसको लोक से भाग दिया, वो द्रव्य की बात है। यहाँ क्षेत्र की बात बताए, उसका क्षेत्र कितना है, कितने क्षेत्र में से वो जानता है, और कितने काल आगे पीछे, वर्तमान काल से आने वाले भविष्य काल और पीछे गया हुआ वो इक्वल होता है, उसको काल कहेंगे। तो काल कितना है, अवली का असंख्यात भाग प्रमाण काल में स्थित उसको जानेंगे। और क्षेत्र कितना देखा था, सूक्ष्म निगोद की जघन्य अवगाना, वो क्षेत्र देखा था, वो पहले कांडक का जघन्य क्षेत्र। इसी कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र, पूरे देशावधि का उत्कृष्ट नहीं बता रहे, ये जो 19 टुकड़े करेंगे वो पहले टुकड़े का जघन्य बताए, जो सब पूरे देशावधि का जघन्य है वो ही पहले कांडक का जघन्य है। अब पहले कांडक का उत्कृष्ट बताना है, तो पहले ही कांडक का उत्कृष्ट कितना है क्षेत्र, तो घनांगुल के संख्यात विभाग में, पहला घनांगुल का असंख्यात भाग था, अब घनांगुल का संख्यात भाग आया, और उत्कृष्ट काल आवली के संख्यात विभाग प्रमाण है। ये भी आवली का संख्यात भाग है, देखो ना, अभी वो भी यानी एक सेकंड का कितना छोटा हिस्सा होगा ये। अब द्वितीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण। अभी द्वितीय कांडक जब कहेंगे उसका जघन्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जघन्य में तो क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ेगा और काल में एक समय बढ़ेगा। यहाँ उत्कृष्ट उत्कृष्ट की लिमिट बताएंगे। तो दूसरे कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण और काल कुछ कम आवली प्रमाण है। ऊपर बताए ना अंगुलम और आवली अंतो, जैसे हम अंत कोड़ा कोड़ी कहते हैं वैसे अंत आवली, कुछ कम आवली प्रमाण है। और तृतीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल पृथक्त्व, यानी कुछ घनांगुल जिसको हम संख्यात घनांगुल कहेंगे, और काल पूर्ण आवली प्रमाण है। ये तीन कांडक हुए। आगे बढ़ते हैं अपन 25 नंबर के पृष्ठ पर, 6 नंबर का वो गाथा ऊपर हम पढ़ेंगे। आवली अपुधत्तम घन हत्थो तह गाउ अम मुहूर्तंतो जोयण भिन्न मुहूर्तम दिवसंतो पन्नुवी संतु। चतुर्थ कांडक में काल आवली पृथक्त्व, यानी कुछ संख्यात आवली या कुछ आवली, और क्षेत्र एक घन हाथ प्रमाण है। घन हाथ क्योंकि हाथ प्रमाण है, केवल ऐसी लंबाई नहीं लिए, घन हाथ, एक हाथ लंबाई एक चौड़ाई और हाइट ऊंचाई, इतने क्षेत्र तक के वो पुद्गल को जानेगा। पंचम कांडक में क्षेत्र गव्युति अर्थात एक कोश तथा काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। मैंने सबसे जघन्य अवधि ज्ञान से शुरू किया, ये पंचम वाला जो है एक कोश प्रमाण तक को जानेगा और अंतर्मूर्त प्रमाण, उसके आगे पीछे का वो नहीं जानेगा। जो कोश तक जानता है उसके काल की मर्यादा अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त आगे पीछे होने वाली या हो चुकी बातें वो जानेगा। कल परसों क्या हुआ था, होने वाला है आने वाले कल में, वो नहीं जानेगा, क्योंकि क्षेत्र के साथ साथ उसकी काल की भी मर्यादा होती चली जाती। छठे कांडक में क्षेत्र एक योजन और काल भिन्न मुहूर्त अर्थात एक समय कम मुहूर्त प्रमाण है। सप्तम कांडक में काल कुछ कम एक दिवस और क्षेत्र 25 योजन प्रमाण है। अभी सातवां नंबर पढ़ेंगे। बरहम्य अद्धमासो साहियमासो विजम्बुदीवम्मि वासं च मनु अलोए वासपुदत्तं चरुजगम्मि। अष्टम कांडक में क्षेत्र भरत क्षेत्र, यानी पूरे भरत क्षेत्र संबंधी उसका क्षेत्र है, वहां तक जानेगा, और काल अर्धमास प्रमाण, यानी वो 15 दिन के आगे पीछे वाली जानेगा, उसके बाद में होने वाली या हो चुकी बातों को उसको पता नहीं चलेगा। नवम कांडक में क्षेत्र जम्बूद्वीप और काल एक मास से कुछ अधिक है, क्योंकि देखो शुरुआत में क्षेत्र द्रव्यों के, तो द्रव्य में तो एक एक परमाणु या एक एक प्रदेश बढ़ते हुए उसके सूक्ष्मगुल के असंख्यात भाग प्रमाण द्रव्य के भेद जाते हैं, तब जाके क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती है, और वे भी क्षेत्र इतना इतना बढ़ता है तब जाके काल में एक समय की वृद्धि होती है। ये बहुत उसकी लंबी चौड़ी बातें हैं। तो इतना क्षेत्र बढ़ा है ने वो द्रव्यों की सूक्ष्मता तक और नीचे नीचे चला गया है, उसकी बात हर वो कांडक में नहीं बताई, वो भी समझना, वहां द्रव्य की अपेक्षा भी सूक्ष्मताएं चल रही है। तो नवम कांडक में क्षेत्र जम्बूद्वीप और काल एक मास से कुछ अधिक है। दसवें कांडक में क्षेत्र मनुष्यलोक यानी ढाई द्वीप और काल एक वर्ष प्रमाण है, यानी जो अवधि ज्ञान से ढाई द्वीप तक को जानता है वो एक ही वर्ष आगे पीछे तक को जानेगा। ग्यारहवें कांडक में क्षेत्र रुचक द्वीप तक और काल वर्ष पृथक प्रमाण है। यह रुचक द्वीप कितने नंबर का है मालूम है? तेरवा कुंडलवर है क्या? रुचक वर है, ग्यारहवा होना चाहिए। इसमें लिखा होगा ना, फाइव फोर्टी पर है। हाँ, द्रव्य की अपेक्षा ने वो पुराने नंबर दिए, चार से सहा है क्या? हाँ, ग्यारहवा कांड रोचक वर तेरवा है, ग्यारहवा कुंडल वर है, उल्टा हुआ, हमने लिख के रखा है यहाँ पर। हमारे पेज नंबर 531 है हिंदी वाला, गाथा 406 है। हाँ हाँ, नीचे नीचे वहीं से बताया आपने। यहाँ पेज नंबर अपना 531 है। वो पुराने नंबर ढूंढारी भाषा के डाले हैं ना, ये 406 नंबर गाथा है। तो ग्यारहवें कांडक में क्षेत्र रुचक द्वीप, ये तेरहवा नंबर है, तेरहवा यानी तेरहवा द्वीप है। काल वर्ष पृथक्त्व प्रमाण है। एक्चुअली यहाँ बारहवें कांडक की बात यहाँ नहीं लिखी है, आगे लिखी है क्या? क्योंकि 19 कांडक है, बीच में देवों की बात ली है। यानी यहाँ बारहवें कांडक यहाँ बताया है, बारहवें कांडक की बात मैं पेज 407 नंबर गाथा में इसे बताती हूँ। यहाँ 19 कांडक को पढ़ लेते पहले। हाँ, मेरे हिंदी में 532 पेज है। बारहवें कांडक में क्षेत्र संख्यात द्वीप समुद्र और काल संख्यात वर्ष है। तेरहवें कांडक में जो तेजस शरीरादिक द्रव्य की अपेक्षा पहले स्थान कहे थे, उनमें क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण है और काल असंख्यात वर्ष प्रमाण है। तेजस शरीर की द्रव्य की अपेक्षा जो भेद बताए ना, अधिक सूक्ष्म तक जानता है, तो तेजस शरीर संबंधी उन्होंने पहले बताया था, उसके द्रव्य संबंधी जो विकल्प है वो शायद आएगी इसमें भी बात। वो तेजस शरीर का क्या है उसको मैं बताती हूँ। ये आने वाली है शायद, यानी ऐसे देशावधि का जो जघन्य हमने देखा था कितने द्रव्य को जानता है, फिर वो बढ़ते 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 तो कोई विश्रसोपचय से ही तेजस शरीर को जानता है, फिर कोई विश्रसोपचय कारमान शरीर के स्कंध को जानते जो और सूक्ष्म है, कोई विश्रसोपचय रहित केवल तेजस वर्गना को जानता है। इस तरह से उसके भेद बताए वो यहाँ बताना चाहते हैं। परंतु इनमें इतना विशेष है कि तेरहवें से चौदहवें में असंख्यात गुणा क्षेत्र और काल है, ऐसे उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा क्षेत्र काल जानना, ये इतना ही बताया उन्होंने। बीच में असंख्यात गुणा होता चला जाता है और बाद में 19वें अंतिम कांडक में द्रव्य तो कारमाण वर्गणा को ध्रुवहार का भाग दीजिए उस प्रमाण और क्षेत्र संपूर्ण लोकाकाश प्रमाण, उत्कृष्ट देशावधि पूरे लोक तक को जानते हैं और काल एक समय कम एक पल्ल्य प्रमाण है, इतने आगे पीछे तक जानेगा। उत्कृष्ट देशावधि अब हम यहां से पढ़ते धवला में से 25 नंबर के पेज पर, और अभी 8 को पढ़ना है। अभी 25 योजन की बात की थी ना, वो अभी यहां बता रहे। पणुवी सयोजनानम ओही वेंतर कुमार वग्गाणम संखेज्ययोजनानम जो इसी आणम जहन्नो ही। व्यंतर और भवनवासी देवों का जघन्य अवधि क्षेत्र 25 योजन और ज्योतिषी देवों का जघन्य अवधि क्षेत्र संख्यात योजन प्रमाण है, यानी उसमें स्थित पुद्गलों को वो जानेंगे। 9 नंबर, असुराणम असंख्ये चा कोडियो से सजोधि संतानम संखातीद सहसा उक्कसो ओहि विसोदु। असुर कुमार देवों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का विषयभूत क्षेत्र, ऊपर वो जगन्य बताया था, यहाँ उत्कृष्ट बता रहे, असंख्यात करोड़ योजन है। शेष 9 प्रकार के भवनवासी व्यंतर एवं ज्योतिषी देवों का उत्कृष्ट अवधि क्षेत्र असंख्यात हजार योजन प्रमाण है, वो असंख्यात करोड़ योजन। 10 नंबर, पेज नंबर 26, सक्की साणा पढ़मम दोच्चन्तु सनक कुमार माहिंदा तच्चन्तु बम्मलंतय सुख सहसार या चौथ। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव प्रथम पृथ्वी तक, सनत कुमार और माहेंद्र कल्प के देव द्वितीय पृथ्वी तक, ब्रह्म और लांतव कल्पों के देव तृतीय पृथ्वी तक, तथा शुक्र, वो शु बराबर लिखना, शुक्र और सहस्रार देवों स्वर्गों के देव, इन्हें शुक्र महाशुक्र और शतार सहस्रार, चतुर्थ पृथ्वी तक देखते हैं। ये ऊपर ऊपर के जितने जान और नीचे नीचे तक जानते अवधि ज्ञान से। आनंद पाणद वासी तह आरण अच्युदाय जे देवा पसंति पंचम किदिम छठिम गे वज्जया जेदु। आनत प्राणत और आरण अच्युत कल्पों में रहने वाले जो देव है वे पंचम पृथ्वी तक तथा ग्रेवेको में उत्पन्न हुए देव छठी पृथ्वी तक देखते हैं, यानी वहां तक के उनका अवधि का क्षेत्र है। सवम चलो यणालिम पसंति अनुत्तरे सुजे देवा सखे थे य सकमे सकमे रूव गदमणंत भागोदु। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में जो देव है वे सब लोकनाली अर्थात कुछ कम 14 राजु लंबी और 1 राजु विस्तृत लोकनाली को देखते हैं। स्वक्षेत्र अर्थात अपने क्षेत्र के प्रदेश समूह में से 1 प्रदेश कम करके अपने अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म द्रव्य में 1 बार अनंत अर्थात ध्रुवहार का भाग देना चाहिए। इस प्रकार एक एक प्रदेश कम करते हुए ध्रुवहार का भाग तब तक देना चाहिए जब तक उक्त प्रदेश समूह समाप्त न हो जावे। ऐसा करने पर जो द्रव्य प्राप्त हो वह विवक्षित अवधि का विषयभूत द्रव्य जानना चाहिए। देखो कितनी सूक्ष्मता बता रहे, अभी कौन से देव कहाँ पर है और वो नीचे कहाँ तक जानते उसकी बात बताई, यानी वहाँ से लेकर नीचे तक वो 1 राजू बाय 1 राजू और उनकी जितने एरिया, जैसे सौधर्म ईशान वो 1.5 राजू तक है और नीचे पहली पृथ्वी तक जानते हैं, तो वहाँ तक की एरिया कैलकुलेट, उसमें प्रदेश कितने हो गए है ना, राजू गुना राजू और उसकी जो हाइट है, इतने प्रदेश है, एक एक प्रदेश को गिनना है अलग अलग, क्या करना उसमें, एक बाजू एक प्रदेश कम करना और दूसरी बाजू क्या करना, अवधि ज्ञानावरण का जो द्रव्य है, अवधि ज्ञानावरण के जितने परमाणु है अनंत अनंत है, उसको वो ध्रुवहार नाम का जो अनंत है उसका भाग देना। तो एक बार भाग देकर जितना आता है ना, भाग देकर जो रहेगा उतने द्रव्य को जानते हैं, वो जो बचा है उसको फिर उसी ध्रुवहार से भाग देना और यहाँ पर एक प्रदेश कम करना, यानी इस तरह से ये सारे प्रदेश कम हो जाएंगे परंतु अवधि ज्ञानावरण का द्रव्य तब भी रहेगा, तो उतने सूक्ष्म द्रव्य को जानेंगे, ये उसका अर्थ है। ध्रुवहार यानी वो तो वही उसी भागहर से बार बार भाग देना, उसको ध्रुवाहर कहते हैं। संख्या है उसकी, वो बताएंगे आगे, क्योंकि कारमान वर्गना को एक बार ध्रुवाहर के भाग दिया था तब जाके उत्कृष्ट का पहले वाला भेद आया था, फिर और एक बार ध्रुवाहर ऐसे करते थे, परमावधि के कितने बार उसको भाग देंगे, जाके सर्वावधि में जाकर उसका एक परमाणु प्रमाण आएगा। यानी परमावधि के जो उत्कृष्ट परमावधि है वो जितना स्कंद को जानते हैं, सूक्ष्म स्कंद को, उसमें जो संख्या है परमाणुओं की, उसको ध्रुवाहर कहेंगे। ये अवधि ज्ञान के बारे में इतना डिटेल है वो जीवकांड में भी कि माथा आउट हो जाता है। हाँ, नरक तक, पृथ्वी ने नरक तक। नहीं, ध्रुवाहार का प्रमाण बताएंगे अभी, परंतु वो मैंने डिराइव करके आपको बताया, क्योंकि परमावधि का जो उत्कृष्ट परमावधि का क्षेत्र है उसको ध्रुवाहार से भाग देंगे तो एक परमाणु आता है, ख्याल में ये बात आएगी, इसमें ध्रुवाहार की बात आने वाली है शायद, क्योंकि ये जो द्रव्य के लिए वो ध्रुवाहार की बात आती है, हम पढ़ेंगे बाद में। ज्यादा ज्यादा है, हाँ। जैसे उनकी गमन शक्ति भी ज्यादा होती है परंतु वो जाते नहीं है, जितने ऊपर के देव उतना उसका अवधि का क्षेत्र भी। दूसरे पुस्तक में वो संदृष्टि भी बनाई है, कौन से देव कहाँ तक जानते हैं, ऐसा ऊपर से नीचे तक ऐसे,
लेकिन वो ध्यान नहीं
लगा, वो जान सकते हैं, वो तो उसी को क्यों जानते रहेंगे। शक्ति है आपको, शक्ति है, वो तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहीं पर फोन लगाओ, कितने बार लगाते हैं दिन में, कोई प्रयोजन वश लगाएंगे कभी किसी को यहाँ कहीं, और वो भी दिन भर थोड़े लगाएंगे, ये रोज की आपकी जो जिंदगी वो चलेगी कहाँ तक जान सकते उसकी बात है। यानी वो दिन भर अवधि ज्ञान में थोड़े रहेंगे, वो मति शुद्ध ज्ञान उनका चलता रहता है। हाँ, देखो ये 12 नंबर हम पढ़ रहे थे ना, ये पढ़ा भी हमने, विवक्षित अवधि का विषयभूत द्रव्य जानना चाहिए। यानी देवों के बारे में ये बताते हैं, देव कहाँ तक जानते हैं, तो उसका को जो एरिया निकालनी है, लोकनाली की एरिया निकालनी है, वो लोकनाली की एरिया निकाल कर उसमें प्रदेशों को गिनना, वो एक बाजू रखना, और एक बाजू क्या लिखना है, वो अवधि ज्ञानावरण का द्रव्य लिखना। तो एक बार यहाँ एक प्रदेश कम करना, और वहाँ एक बार ध्रुवाहर का भाग देना, भाग देंगे तो और छोटी संख्या आएगी ना उसमें, जैसे पहले 100 थे उसको मैंने 5 का भाग दिया तो 20 आए, और एक बार 5 का भाग दिया तो 4 आए, इस तरह से हर बार उसी भागहर से भाग देते चले जाना, यानी और उतने छोटे छोटे स्कंदों को जानते रहेंगे। यानी अवधि ज्ञानावरण का द्रव्य कितना होगा आप इमेजिन करेंगे, यहाँ सारा क्षेत्र भी खलास हो जाएगा, तो जो द्रव्य बचेगा उतने छोटे द्रव्य को, यानी उतने सूक्ष्म स्कंद तक को जानते हैं, ये उसका अर्थ है। क्योंकि जितना जितना बड़ा क्षेत्र तक जानते ना, अभी जितना वो जैसे सर्वार सिद्धि वाले 14 राजू तक को जानते हैं, तो 14 राजू यानी 14 घन राजू लेना, एक राजू है 14 राजू, अब उसके प्रदेश कितने ज़्यादा हो जाएंगे, कितने असंख्यात हो गए, अब उस प्रदेशों में से एक एक प्रदेश कम करो, और यहाँ अवधि ज्ञानावरण के द्रव्य को एक एक बार ध्रुवाहर से भाग दो, तो कितना छोटा स्कंद रहेगा, उतने सूक्ष्म स्कंद तक को जानते, और पूरे लोकनाली में जितने ऐसे स्कंदे उसको जानेंगे, ये उसका अर्थ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 12 के बाद पढ़ेंगे। इन गाथाओं द्वारा कहे गए समस्त अवधि क्षेत्रों का यह अर्थ यथासंभव कहना चाहिए, क्योंकि अन्यथा पूर्वोक्त दोषों का प्रसंग आता है, यानी वो श्रेणी में नहीं, प्रतर में नहीं, इस तरह से वो तो घनाकार में जानेंगे। इस प्रकार जघन्य अवधि के क्षेत्र की प्ररूपना की गई है। देखो, जघन्य अवधि का क्षेत्र बताया है और उसी में उन्होंने अन्य भी जो कुछ विकल्प बता दिए, उसके कांडकों की भी थोड़ी बात की है। अब जघन्य अवधि के काल की प्ररूपना करते हुए इस प्रकार, हमने देखा था अवली का असंख्यात विभाग आगे पीछे तक को जानते हैं, वही इस प्रकार है। आवली के असंख्यात विभाग का आवली में भाग देने पर, यानी आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात, ये जिस संख्या से डिवाइड करना है उसका प्रमाण भी आवली का असंख्यात विभाग है, यानी आवली डिवाइडेड बाय आवली का असंख्यात विभाग। जघन्य अवधि का काल आवली के असंख्यात विभाग मात्र होता है। इतने मात्र काल में जो कार्य हो चुका है वो रूपी पदार्थ का कार्य, यानी उसकी जो कुछ अवस्था और जो होने वाला हो उसे जघन्य अवधि ज्ञानी जानता है, यह उक्त कथन का अभिप्राय है। शंका, इसका काल इतना मात्र ही है, यह कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र व काल क्रमशः घनांगुल और आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है, इस गाथा सूत्र के कथन से जाना जाता है। पूरा घनांगुल नहीं है, घनांगुल का असंख्यात विभाग और आवली का असंख्यात विभाग अभी हमने पढ़ा था ना, देखो पहले कांडक में देखा था। यहाँ घनांगुल कहने से वो असंख्यात विभाग दोनों के लिए लगाना, यहाँ लिखा ना घनांगुल, यानी घनांगुल के और आवली के असंख्यात विभाग, इसमें यानी समझने के लिए घनांगुल के असंख्यात विभाग और आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है, यानी क्षेत्र है वो घनांगुल के असंख्यात विभाग और काल है वो आवली के असंख्यात विभाग है, ये गाथा सूत्र में उन्होंने बताया था। इस प्रकार जघन्य अवधि के काल की प्ररूपना की गई। पहले उन्होंने द्रव्य बताया, द्रव्य में तो औदारिक शरीर का संचय विश्रसोपचय सहित डिवाइडेड बाय लोक, जितने खंड हो गए एक खंड का जो प्रमाण वो द्रव्य का प्रमाण बताया। क्षेत्र में कितना बताया? घनांगुल का असंख्यात विभाग। काल में कितना बताया? आवली का असंख्यात विभाग। अब भाव की बात करेंगे, भाव यानी उसके जो पर्याय जो कुछ पुद्गल के। अब जघन्य अवधि के विषयभूत भाव की प्ररूपना करते हैं, वह इस प्रकार है। अपना जो जाना हुआ द्रव्य है उसकी अनंत वर्तमान पर्यायों में से, क्योंकि जो द्रव्य है, जो स्कंद है, अभी उसका विषय क्या है? छोटा स्कंद है, तो उसकी तो अनंत पर्याय है ना। वर्तमान में हमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि स्थूल हम चार पांच बताते हैं, पर उसमें अनंत गुण है तो पर्याय भी अनंत होती है। उसमें से जघन्य अवधि ज्ञान के द्वारा विषयीकृत, यानी जिसको वो जानता है, विषय किया है, उसके द्वारा जिन पर्यायों को विषय किया है वो आवली के असंख्यात विभाग मात्र पर्याय, ये जघन्य भाव है। जघन्य भाव की लिमिट क्या है? तो आवली के असंख्यात विभाग मात्र पर्यायों को ग्रहण करता है। कितने ही आचार्य जघन्य द्रव्य के ऊपर स्थित रूप रस गंध एवं स्पर्श आदि रूप सब पर्यायों को उक्त अवधि ज्ञान जानता है ऐसा कहते हैं, किंतु वह घटित नहीं होता क्योंकि वे अनंत है। सब पर्यायों को लिखा ना, वो सब नहीं है, और उत्कृष्ट भी अवधि ज्ञान अनंत संख्या के जानने में समर्थ नहीं है क्योंकि आगम में वैसे उपदेश का अभाव है। और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान भी वो तो असंख्यात को ही जानेगा, भले वो असंख्यात का प्रमाण बहुत अधिक होगा परंतु वो अनंत को नहीं जान सकता। शंका, द्रव्य में स्थित अनंत पर्यायों को प्रत्यक्ष से न जानता हुआ अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष से द्रव्य को कैसे जानेगा? क्या कहना चाहते हैं? जो उसकी स्कंद है उसकी सभी पर्यायों को अगर नहीं जानता है तो वो स्कंद को जानता है ऐसा कहेंगे कैसे? आप प्रत्यक्ष जान रहे हैं ना, तो ऐसा क्यों कहेंगे? समाधान, नहीं, क्योंकि उक्त अवधि ज्ञान पर्यायों के अवयवों में रहने वाली अनंत संख्या को छोड़कर असंख्यात पर्याय अवयवों से विशिष्ट द्रव्य का ग्राहक है। जैसे हम भी देखते हैं ना, हम आंखों से देखते हैं, पदार्थ को देखा हमने, तो हमने उसका वर्ण रस गंध स्पर्श के बारे में थोड़ा कुछ जाना, पर क्या उतनी सूक्ष्मता जानी जो हम भगवान जानते हैं? उसकी अनंतता को तो नहीं जाना हमने, यही बात यहाँ कह रहे हैं। शंका, अतीत व अनागत पर्यायों की भाव संज्ञा क्यों नहीं है? उसको भाव क्यों को यहां नहीं कहा? तो उसको कहते हैं नहीं है, क्योंकि उन्हें काल स्वीकार किया गया, यानी काल के अंतर्गत वो आता है। उसकी जो पूर्व काल की पर्याय, उस द्रव्य को भूत और भविष्य में जानता है, उसका अर्थ क्या है? उसकी भूत और भविष्य की कुछ पर्यायों को जानता है, इसलिए वो काल में अंतर्गत हो गई। इस प्रकार जघन्य भाव की प्ररूपणा की गई। हाँ? उन्हें देखो देखो न तेसिम कालतभुवद गमाद, उसमें काल इन्वर्टेड में डालो, नहीं है क्योंकि उन्हें उन्हें स्वीकार किया गया है ना, उन्हें उसके ऊपर डालो, काल स्वीकार किया गया है, यानी काल में उसको कहा है, अतीत और अनागत के पर्यायों को काल में बता दिया है। अब यहाँ हमको वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात है, ये जघन्य में जघन्य बता दिया। अब जो दूसरा विकल्प है अवधि ज्ञान का, सबसे जघन्य बता दिया, अब नेक्स्ट जो अवधि उससे थोड़ा पावरफुल अवधि ज्ञान है, उसमें क्या होगा? द्रव्य में क्या होगा? द्रव्य बढ़ेगा कि कम होगा, छोटा होगा? सूक्ष्म की ओर चला जाएगा, क्षेत्र और काल बढ़ेंगे। हाँ, तो क्या हर भेद में बढ़ते हैं क्या, ये पूछना चाहते? ऐसा नहीं है, द्रव्य की अपेक्षा आगे आगे सूक्ष्म तक होते चले जाएंगे, फिर भी क्षेत्र उतना ही रहेगा, फिर आगे ऐसे कितने ही द्रव्य के भेद हो जाने पर क्षेत्र एक प्रदेश से बढ़ेगा, अब वो यहाँ बताना चाहते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे अभी हम इसको। अब जघन्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को परिपाटी से स्थापित कर द्वितीय अवधि ज्ञान के विकल्प को कहते हैं, यानी जो अवधि ज्ञान का दूसरा भेद है उसको यहाँ कहेंगे। परिपाटी से स्थापित करने हम ऐसा अभी देखेंगे, ये जघन्य अवधि ज्ञान का जो द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है और जो भाव है, हम देखे ना यहाँ जिसका वो जो कोई जो मिनिमम है, क्षेत्र इतने क्षेत्र तक को जानता है, काल आगे पीछे अवलिका संख्यात भाग वगैरह वगैरह। अब ये जो ये पहले नंबर का अवधि ज्ञान की बात है, अब दूसरे अवधि ज्ञान दूसरे नंबर का अवधि ज्ञान क्या जानता है? हम जघन्य से शुरू कर रहे हैं, जघन्य की बात बता दी, जघन्य के ऊपर जो दूसरा भेद है वो कितना जानता है उसकी बात यहाँ करेंगे। तो द्वितीय अवधि ज्ञान के विकल्प को कहते हुए इस प्रकार है, देशावधि सर्वावधि और परमावधि के द्रव्य की प्ररूपणाओं में मेरु पर्वत के समान अवस्थित, मेरु पर्वत कैसा है? ध्रुव अचल है, तो वैसे ही ये जो भागहार है वो संख्या निश्चित है, वो बदलेगी नहीं। देशावधि से लेकर सर्वावधि उत्कृष्ट तक हर एक एक ज्ञान के जो भेद होंगे, फिर वो देशावधि के हो, परमावधि के हो, कुछ है। अभी जघन्य से जो हमने स्कंध को परमाणु की संख्या देखी थी, अवधारिक शरीर के संचय विश्रसोपचय से डिवाइडेड बाय लोक, उसको उस विशिष्ट भागहार से भाग देंगे, जो संख्या आएगी वो द्रव्य है दूसरे ज्ञान का, उसको फिर ध्रुवहार से भाग देंगे तीसरा ज्ञान, ध्रुवहार से भागेंगे चौथे ज्ञान, चौथे ज्ञान का द्रव्य। इस तरह से द्रव्य हर बार उसी ध्रुवहार से, ध्रुवहार है ध्रुव भागहार, फिक्स संख्या है, उसी से भाग देते चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? वो जघन्य देशावधि से लेकर परमावधि के उत्कृष्ट तक, और उसको भाग देंगे तो सर्वावधि का एक परमाणु आ जाएगा। फिर पढ़ते तो आपको ख्याल आएगा। देशावधि, सर्वावधि और परमावधि के द्रव्य की प्ररूपणाओं में, द्रव्य ने वो कितने सूक्ष्म स्कंध तक जानता है उसकी प्ररूपणा में, मेरु पर्वत के समान अवस्थित यानी निश्चित ध्रुव संख्या है उसकी, मनोवर्गना के अनंतवे भाग का विरलन करके, मनोद्रव्य वर्गना जो है इसका अर्थ है मनोवर्गना के जो भेद है, हर एक वर्गना में हमने मिनिमम कितने परमाणु, मैक्सिमम कितने परमाणु, ये बात वो जीवकांड में पहले देखी थी, पुद्गल की जो 23 वर्गना है ना उसमें ये बात आई थी। तो जघन्य मनोवर्गना का जो जघन्य भेद है और मनोवर्गना का जो उत्कृष्ट भेद है, तो उसके भेद कितने हैं, तो उसके अनंत वा भाग, तो मनोद्रव्य वर्गना के अनंत वे भाग का विरलन करके, यानी वो जघन्य से उत्कृष्ट वो भी यानी अनंत होगी ना उसके भेद, तभी तो उसको दूसरे अनंत का भाग दे सकते हैं, तो उसका विरलन करके, विरलन करना उसको जुदा जुदा स्थापना, उसके ऊपर जघन्य द्रव्य को समखंड करके देने पर, अपनी भाषा में ये जो जघन्य द्रव्य का प्रमाण है कौन सा, वो औदारिक शरीर संचय वगैरह वगैरह, उसका भाग देना, तो एक भाग के प्रति कौन सा जो संख्या आएगी उसको हम कहेंगे ध्रुवहार, जो भी अनंत में आती है। फिर से मनोद्रव्य वर्गना के अनंत वे भाग का विरलन करके उसके ऊपर जघन्य द्रव्य को समखंड कर देने पर उसमें उसमें एक रूप धरित, पहले हमने क्या किया, विरलन किया, विरलन करने का अर्थ क्या होता है, एक एक में बिखेर दिया, जैसे हमारे पास चार संख्या है, चार हमने एक एक में बिखेर दी, और वो चार एक एक में बिखेर दी उसके ऊपर 256 हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक एक के ऊपर कितना आएगा, 256 डिवाइडेड बाय 4 है ना, तो एक एक के ऊपर 64 कितना आ जाएगा, वही 64 ही आएगा ना, 64 चार बार आ जाएगा। ऐसे यहाँ करना क्या है, मनोद्रव्य वर्गना का जो अनंत वा भाग है उसको विरलन कर दो, एक 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 में लिख दो, यानी वो भी अनंत में आएगी संख्या, और उसके ऊपर क्या देखना है, ये जो औदारिक शरीर का संचय वो सब देखा था, वो एक खंड में जितने परमाणु होते उसको उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एक के ऊपर जितना संख्या आएगी उसकी बात है ये, यानी जघन्य द्रव्य को समखंड करके देने पर, यानी इसका अर्थ है जघन्य द्रव्य डिवाइडेड बाय वो मनोवर्गना का अनंत वा भाग, मैंने ऐसे जघन्य द्रव्य से भाग देना कहा तो वो उल्टा हो गया, उसमें एक रूप धरित खंड द्रव्य का द्वितीय विकल्प होता है, पेज नंबर 28 को पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये मनो द्रव्य वर्गना का जो अनंत वा भाग है वही ध्रुवहार होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले द्रव्य को उससे भाग दिया ना, तो दूसरे का विकल्प आया, यानी ये ध्रुवहार का, ध्रुव भागहार का प्रमाण कितना है कि मनोद्रव्य वर्गना के अनंत वे भाग है, इसी को ध्रुवहार कहा है। बहुत घोटाला हो रहा है का? नीचे देखो गोमरसार जीवकांड 386 गाथा का रेफरेंस दिया है उन्होंने, 386 वहां से पढ़ के बताती हूँ मैं, पेज नंबर 521 है हमारे में हिंदी में, हाँ, मनोवर्गना के जितने भेद हैं उनको अनंत का भाग देने पर एक भाग का जितना प्रमाण हो वह ध्रुवहार का प्रमाण जानना, वे मनोवर्गणा के भेद कितने हैं? तो कहते मनोवर्गणा का जो जघन्य का प्रमाण है ना, वो उसको उत्कृष्ट में से माइनस करो और एक मिला दो। जैसे हमने कहा कि जब यानी 20 से 100 तक भेद है, कहेंगे 20 से लेकर 100 तक, तो भेद कितने हो गए? 20 वाला एक हुआ, 21 वाला, 22 वाला, 23 वाला, तो 100 में से 20 कम करो और एक मिला दो, क्योंकि हमको 20 को भी इंक्लूड करना है, तो 81 भेद हो जाएगी। ऐसे यहाँ कहते हैं मनोवर्गणा का जघन्य है, उसको मनोवर्गणा के उत्कृष्ट में से माइनस कर दो और एक मिला दो, इतने मनोवर्गणा के भेद हो जाएंगे और उसको अनंत का भाग देना, तो ध्रुवहार का प्रमाण आ जाता है। क्योंकि उसका जघन्य भेद भी अनंत प्रमाण है और उत्कृष्ट उससे भी अनंत अनंत गुना है, अनंत गुना है। ये ध्रुवहार का प्रमाण बताया, यानी मनोवर्गणा द्रव्य का अनंत भाग यही ध्रुवहार है। यानी पहले नंबर का द्रव्य डिवाइडेड बाय ध्रुवहार इज इक्वल टू दूसरे नंबर का द्रव्य डिवाइडेड बाय ध्रुवहार इज इक्वल टू तीसरे नंबर का द्रव्य। नंबर है ना, तीसरे नंबर का अवधि ज्ञान का द्रव्य। एक बात ख्याल में आती है, देखो देखो, पहला पहले जघन्य का जो हमने द्रव्य देखा, हाँ बराबर, उस द्रव्य को ध्रुवहार से भाग देंगे तो दूसरे अवधि ज्ञान का द्रव्य, हाँ वो ध्रुवहार का प्रमाण, वो कांस्टेंट है। जब जब हम कहेंगे ध्रुव भागहार तो वो यही भाग समझना, उसकी संख्या निश्चित है। यानी जो पहले वाला जो ज्ञान है उससे वाला दूसरे वाला जो ज्ञान है, तो एकदम इतनी सूक्ष्मता जाए, खाली एक परमाणु को हम दो परमाणु को हम ऐसे उसमें नहीं होगा। पहला जो जघन्य का भेद देखे हमने, जघन्य अवधि ज्ञान, तो दूसरे नंबर का अवधि ज्ञान उसमें वो ध्रुवहार का भाग देने पर वो कितना छोटा हो जाएगा, वहां तक को जानेगा वो डायरेक्ट, यही कहते हैं। यहाँ पर द्वितीय विकल्प होता है, उस पैराग्राफ की चार लाइन हो गए, अभी पांचवी लाइन में, क्योंकि पूर्वोक्त जघन्य द्रव्य की अपेक्षा करके एक दो परमाणु आदि कौन से हीन पुद्गल स्कंध के ग्रहण करने में समर्थ, ऐसे ज्ञान के निमित्तभूत अवधि ज्ञानावरण के एक सूक्ष्म का अभाव है। यानी जो जघन्य जितना द्रव्य को जानता है उसके नेक्स्ट वाला अवधि ज्ञान कितना जानेगा, तो अभी एकदम ध्रुवहार से भाग देने पर जो कम होता है उसको, हाँ ये क्या कहते सुना, भाग भाग देके चला जाना, 10,000 को 10 से भाग दिया कितना आया, 1,000, 1,000 आया। तो वो जघन्य वाला 10,000 वाले स्कंध को जानता था, अभी दो नंबर का अवधि ज्ञान है वो 1,000 वाले स्कंध तक को, इतने सूक्ष्म तक को जानेगा। बीच वाले उसमें आ गए ना सारे, पर उसका द्रव्य कितना कहेंगे, वो वाली बात, क्योंकि जो उसका मिनिमम कितना है वो बता रहे। केवल वो पहला 10,000 को जानता था और दूसरे अवधि ज्ञान 9,999 को जानता है, ऐसा नहीं है, वो उसकी लिमिट वहाँ तक पहुँच गई दूसरे नंबर की, जो वहाँ से जो 10,000 से 1,000 तक गए ना, तो 1,000 को जानता है तो 1,100 को भी जानेगा, 1,200 को भी जानेगा, 9,000 को भी जानेगा, 10,000 को भी जानेगा, ऊपर सभी जानेगा, उसकी वो कहाँ तक को जानता है उसकी लिमिट बताए। यानी एक दो परमाणु से कम को जानता है ऐसा नहीं, एकदम इतना ड्रॉप हो जाता है। शंका, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, वह अवधि ज्ञानावरण की असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृतियां है, इस वर्गणा सूत्र से जाना जाता है। यानी अवधि ज्ञानावरण के जितने अवधि ज्ञान के भेद होंगे, उतने अवधि ज्ञानावरण की जुदी जुदी प्रकृतियां होगी। समझ में आती है बात? अवधि ज्ञान जितना, जो पहला नंबर का अवधि ज्ञान, दूसरा नंबर का अवधि ज्ञान, तीसरा नंबर का अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञानावरण के भी इतने भेद हो गए कि नहीं वहां पर? हाँ। अब भाव का द्वितीय विकल्प लाने के लिए क्या कहना चाहते हैं? अभी हमने एक लाइन में ऊपर द्रव्य, फिर क्षेत्र, काल और भाव लिखा। जहाँ द्रव्य का द्वितीय विकल्प हो जाता है, उसी के साथ भाव का भी द्वितीय विकल्प होता है, परंतु क्षेत्र उसी पर रहेगा कुछ काल के लिए। द्रव्य की अपेक्षा अनेक भेद जाने पर जाके क्षेत्र का द्वितीय विकल्प एक प्रदेश से बढ़कर आएगा। यानी कितने विकल्प अवधि ज्ञान के हो गए, क्योंकि हमने देखा है ना, यहाँ ये सूक्ष्म निगोद की अवगाहना से लेकर पूरे लोक तक के जानने वाले, तो कितने अलग अलग विकल्प हो गए क्षेत्र के, तो उसमें द्रव्य के भेद कितने और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पढ़ेंगे हम, भाव का द्वितीय विकल्प लाने के लिए, बीच में क्षेत्र और काल को छोड़ दिया है, द्रव्य का द्वितीय विकल्प देखा, उसी के साथ भाव का द्वितीय विकल्प लाने के लिए, जिन भगवान से देखा गया है स्वरूप जिसका, ऐसा असंख्यात गुणकार देना चाहिए। मूल में वो कितने पर्यायों को जानता है वर्तमान के, तो असंख्यात को, वो उसको और असंख्यात गुणा कर देना। और वो असंख्यात का प्रमाण क्या है? यथायोगी जो भगवान ने देखा है। अर्थात भाव का द्वितीय विकल्प प्रथम विकल्प से असंख्यात गुणा है। असंख्यात गुणा वो क्यों बढ़ नहीं जाता है, उसके अनेक पर्याय, अधिक और अनेक असंख्यात गुणे पर्याय उसके ज्ञान में आ जाएगी। ध्रुवाहार को बताए ना अभी, वो तो द्रव्य को दूसरा विकल्प है, भाव का चल रहा है। भाव असंख्यात गुणा पर्यायों को जानेगा। देखो द्रव्य में ही केवल घटना होता है, क्षेत्र काल और भाव में बढ़ना होता है। द्रव्य का जो दूसरा विकल्प है वही भाव का द्वितीय विकल्प है, पर क्षेत्र के द्रव्य के अनेक विकल्प जाने पर क्षेत्र का नेक्स्ट विकल्प आएगा। हाँ, भाव में असंख्यात गुणा वृद्धि होती जा रही है हर एक। हाँ, द्रव्य जो है वो उसके भाग प्रमाण, भाग प्रमाण, भाग प्रमाण होगा। यहाँ लिखा ना लास्ट लाइन में 28 पेज पर, क्षेत्र और काल जघन्य ही रहते हैं क्योंकि यहाँ उनकी वृद्धि का अभाव है। यानी देखो अभी यहाँ हम द्रव्य के विकल्प अर्थ क्या है, अवधि ज्ञान के भेद द्रव्य की अपेक्षा हम कर रहे हैं। तो पहला भेद देखा हमने, वो तो कौन सा, द्रव्य की अपेक्षा भेद, वो औदारिक का संचय वगैरह। दूसरा भेद, गृहार से भाग दिया तो दूसरा भेद आया, और एक बार भाग दिया तीसरा, और एक भाग दिया चौथा, इस तरह से चलते जाओ। तो देशावधि का द्विचरम भेद है, वहाँ कारमान वर्गणा का वर्गणा उसका वो क्षेत्र था। द्विचरम कहाँ तक जानते हैं, तो कारमान वर्गणा का जो अवगाहना है, कारमान वर्गणा की अवगाहना करी, कर्म पूरा नहीं, कारमान वर्गणा की अवगाहना। और अंतिम विकल्प क्या होगा, कारमान वर्गणा डिवाइडेड बाय ध्रुव भागार। कारमान वर्गणा में भी अनंत परमाणु होते हैं ध्रुवहार, और फिर परमावधि में उसको भी ध्रुवहार से भाग देते चलते देते देते चले जाओ, सर्वावधि में एक परमाणु आ जाएगा। परमावधि का जो अंतिम भेद है वो ध्रुव भागहार समान होगा, तो इसलिए सर्वावधि में क्या, ध्रुवहार डिवाइडेड बाय ध्रुवहार संख्या एक आ जाती है। अभी तो हम देशावधि की बात देख रहे हैं। देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, क्षेत्र और काल जगन नहीं रहते क्योंकि यहाँ उनकी वृद्धि का अभाव है। वृद्धि का अभाव है, क्षेत्र और काल उतना ही रहते हुए वो द्रव्य की अपेक्षा दूसरा, तीसरा, चौथा आदि अनेक विकल्प होते रहेंगे। हाँ, द्रव्य और भाव, द्रव्य सूक्ष्मता की ओर जा रहा है और भाव असंख्यात गुना बढ़ता रहे। अब 29 नंबर के पेज होते हैं, शंका, यहाँ उनकी वृद्धि का अभाव है। किसका, क्षेत्र और काल का वृद्धि का अभाव है, यह कैसे जाना जाता है? उसके लिए वो 12 नंबर की सूत्र गाथा बताई उन्होंने, कालो चौन्न उठी कालो भजियो खेत उड्ढीये, उड्ढीये दौव पचय भज दौवा खेत कालाय। काल की वृद्धि होने पर द्रव्यादि चारों की वृद्धि होती है, यानी जब काल की दूसरा विकल्प आएगा तो वहां तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सबका नया विकल्प शुरू होता है। क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल वृद्धि भजनीय है। जब क्षेत्र का नया विकल्प होता है तो काल बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं। पहले हमने क्या देखा था, द्रव्य के विकल्प अलग अलग होते हैं तो क्षेत्र और काल नहीं बढ़ते। जब ही द्रव्य के अनेक विकल्प होने पर क्षेत्र की वृद्धि हुई, उस समय द्रव्य की भी वृद्धि हुई, क्षेत्र की भी हुई और भाव की भी हुई, काल की नहीं हुई थी। क्षेत्र के अनेक विकल्प चले जाने पर वहां क्षेत्र की भी वृद्धि, काल की भी हुई, द्रव्य की भी हुई, भाव की भी हुई, ये कहना चाहते हैं। द्रव्य और भाव की वृद्धि होने पर क्षेत्र और काल की वृद्धि भजनीय, भजनीय नहीं ऑप्शनल, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, क्योंकि द्रव्य के असंख्यात भेद हो जाने पर जाके वो काल क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगी, तब भी काल वही रहा पहले वाला। फिर ऐसे क्षेत्र के दूसरा विकल्प और तीसरा, क्षेत्र की अपेक्षा दूसरा विकल्प देखा, क्षेत्र की अपेक्षा तीसरा विकल्प, क्षेत्र की अपेक्षा चौथा विकल्प, ऐसे क्षेत्र के अनेक विकल्प जाएंगे तब काल एक समय से बढ़ जाएगा। हाँ, क्षेत्र की होती तो काल के ऑप्शनल है, बाकी तीन होते हैं इस तरह। हाँ, जहाँ क्षेत्र बढ़ता है वहां तो द्रव्य तो बढ़ता ही है ना। इस वर्गना सूत्र से जाना जाता है, देखो, पश्चात बहुरूप धरित खंडों को छोड़कर, बहु चाहिए ना, बह हुआ है, बहु चाहिए, ऊपर बहुरूप धरक है, यहाँ क्या कहना चाहते हैं देखो, ये उनकी भाषा और ये सब इतना कठिन है। पहले हमने विरलन किया था, आपको याद है, एक 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 में बिखेर दिया, किसको, ध्रुवहार को, यानी मनोवर्गणा के भेदों को, यानी मनोवर्गणा के भेदों को अनंत का भाग दिया था, उसको ध्रुवहार कहा था, उसको हमने विरलन किया, और उसके ऊपर किसको हमने समखंड करके दिया, औदारिक का संचय प्लस विश्र सोपचय डिवाइडेड बाय लोक, तो उसको समखंड किया करके दिया, तो उसको डिवाइड किया, यानी अपनी भाषा में क्या है कि औदारिक हम उसको औ कहेंगे, उसको हमने ध्रुवहार से भाग दिया, वो ध्रुवहार से भाग दिया, तो यहाँ कौन सी जो संख्या निकली वो द्वितीय विकल्प था, ये द्वितीय विकल्प, ये कैसे निकाला, ध्रुवहार को हमने एक एक करके विरलन किया और उसके ऊपर ये औदारिक को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक के प्रति जितना आया ये हमारा द्वितीय विकल्प का द्रव्य है। जरा समझने जैसी कठिन है बात, परंतु समझे तो ये वाक्य का अर्थ समझ में आया, नहीं तो नहीं आएगा। एक रूप के ऊपर ये एक रूप धरित जो ध्रुवहार का विरलन करके एक के ऊपर जो संख्या आई वो द्वितीय अवधि ज्ञान का द्रव्य है, और बाकी एक एक के मिल ऊपर जो मिलकर है उसको कहेंगे बहुरूप धरित। इसको छोड़कर जो एक रूप धरित है उसको फिर ध्रुवहार से भाग दिया, इसको ऐसा कहना चाहते, ये बहुरूप धरित का अर्थ है। देखो देखो देखो, फिर से वो द्रव्य इतने में विरलन कर दिया, विरलन के जितने एक एक है उसमें सब में वो औदारिक का द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट किया था। हाँ देखो, फिर से मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ, हमारे पास 10,000 है और उसको हमने 10 से भाग दिया तो कितनी संख्या आई? 1,000 आ गई। तो अभी इसको हम ये विरलन की भाषा में बताएंगे। 10 का हमने विरलन किया और 10,000 को वो 10 में बांट दिया तो एक के प्रति कितना आया? 1,000। और बहु रूप धरित कितना आया? 9,000। उसको छोड़ दो, अब 1,000 को फिर 10 से भाग दो तो क्या आ जाएगा? 100। ये कहना चाहते हैं। हाँ, जो आया उसको देखो, ये यहाँ बहुरूप धरित शब्द है ना, अभी 28 पेज पर पहला पैराग्राफ देखो, उसमें चौथी लाइन क्या है? एक रूप धरित खंड द्रव्य का द्वितीय विकल्प होता है, यानी विरलन के एक प्रति जो संख्या आई वो एक रूप धरित है। वो कैसे निकाला हमने? कि जघन्य द्रव्य डिवाइडेड बाय ध्रुव भागार, उससे वो एक रूप धरित संख्या आ गई। डिवाइडेड बाय ध्रुव लिखो ना, ध्रुव भागार यानी ध्रुव, उससे एक विरलन के प्रति जो संख्या आई वो आई। अब यहां क्या लिखा है? बहुरूप धरित खंडों को छोड़कर, यानी वो एक रूप धरित है, वो ये बाकी जो बचा हुआ वो बहुरूप धरित, यानी विरलन के बाकी, विरलन के अन्य एक के ऊपर का द्रव्य, क्योंकि वो बहुरूप धरित क्या होता है वो समझ में नहीं आई तो बात, यानी हमने उसका एक भाग को ग्रहण किया, जैसे हमने 10,000 को 10 सा भाग दिया और 1,000 आ गए, अभी वो 9,000 को छोड़ दो और एक रूप धरित द्वितीय विकल्प रूप द्रव्य को, ये जो वहां लिया था एक के, वहां जो बात आई थी ना एक रूप धरित, वही एक रूप धरित संख्या इसको है, वो एक रूप धरित को फिर अवस्थित यानी वो फिक्स भागार से भाग दो, जिसको हमने अवस्थित भागार के बदले ध्रुव भागार कहा था उसका भाग दो। भागार के प्रत्येक रूप के ऊपर समखंड करके देने पर, जैसे हमारे एक रूप के ऊपर कितना है, हमारे उदाहरण में 1,000 आए, अब उस एक रूप को 1,000 की संख्या है, फिर 10 में उसको विरलन करो, फिर एक के प्रति कितने आ जाएगा? 100 आ जाएंगे। ये कहना चाहते हैं, है ना? देखो, तो अवस्थित भागार के प्रत्येक रूप के ऊपर समखंड करके देने पर उनमें एक खंड तृतीय विकल्प रूप द्रव्य होता है, यानी अवधि ज्ञान के तीसरे भेद का वो द्रव्य का प्रमाण आ जाएगा, फिर वो 100 को और 10 से भाग दो, इस तरह से जाना है। अब ये द्रव्य की अपेक्षा भेद हुआ, द्वितीय भाव विकल्प को, भाव में क्या करना? असंख्यात गुणा करना, उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर तृतीय भाव विकल्प होता है। भाव में उसके योग्य इतने ही बताया, द्रव्य में तो फिक्स भाग आ रहे, क्षेत्र और काल जघन्य ही रहते हैं, शेष खंडों को छोड़ करके एक रूप धरित तृतीय विकल्प रूप द्रव्य को, ये समझ में आया ना अभी? जैसे हमने एक रूप के ऊपर 1,000 थे, फिर उसके एक रूप के ऊपर 100 आए, फिर और उसको 10 से भाग दिया तो एक रूप के ऊपर 10 आए, इस तरह से। तो तृतीय विकल्प रूप द्रव्य को अवस्थित विरलना से विरलित कर समखंड करके देने पर चतुर्थ विकल्प रूप द्रव्य होता है, यानी द्रव्य की अपेक्षा ये पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद, ऐसा हर बार ध्रुव भागार से भाग देते चले जाना है। तृतीय भाव विकल्प को तत्प्रायोग्य, यहाँ तत्प्रायोग्य शब्द आया, यानी यथा योग्य जो असंख्यात है उसके योग्य या तत्प्रायोग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर चतुर्थ भाव विकल्प होता है। अभी हम इस प्रकार अभ्रांत होकर पंचम, छठा, सातवां आदि, यानी हर बार जो द्रव्य का जो आगे आगे का विकल्प है वो ध्रुवार से भाग देते चले जाना, फिर भी क्षेत्र और काल उतना ही रहा है, कब तक? आदि अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्पों को उत्पन्न करना चाहिए। यानी वो देखो अंगुल का असंख्यात भाग यानी कितना प्रमाण होगा, तो द्रव्य की अपेक्षा कितने सूक्ष्म सूक्ष्म भेद होते चले जाएंगे। अभी भी क्षेत्र उतना ही, कौन सा निगोद की अवगाहना वाला और काल आवले का असंख्यात भाग, तब द्रव्य की अपेक्षा इतने सूक्ष्म स्कंधों तक जानता चला जा रही, कितने भेद हो गए उसके। अंगुल का असंख्यात भाग कितना बड़ा असंख्यात है, इतने भेद द्रव्य की अपेक्षा जुदे जुदे हो जाएंगे। अब यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं